समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और हम उन विशिष्ट व्यक्तियों की भी बात करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश। Mukesh, recent reports since last few months gives us a detail of widespread record-breaking daily rainfall figures and flooding in not only cities like Delhi, Bengaluru and Mumbai, but of course in Punjab, Kashmir, Himachal Pradesh, everywhere, causing significant disruption, traffic chaos and even deaths due to infrastructure overload and poor drainage systems, I would say.
Bilkul.
Sending signals year after year for the pressing need for an improved urban planning and infrastructure. Of course, we will discuss more on this in our Dateline program today. But amongst all this not-so-positive reports comes a decision from the government on the recent GST reforms, bringing festive cheer by making many everyday items cheaper. This reform brings down prices on household essentials, personal care products, small cars, consumer electronics, providing significant relief to the middle class and boosting domestic consumption. So, happy shopping to all those who have been planning to buy something in the upcoming festive season of the Shehra Diwali Chhat and many more later in the coming months.
Bilkul.
Mukesh, ja rahe hain, fir bazaar aap.
Bilkul, bilkul. 22 tarikh ke baad zarur jayenge.
But right now, let's begin our parikrama with news making headlines at the moment.
Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देशों का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना सभी राष्ट्रों का कर्तव्य है।
इंडिया एंड सिंगापुर साइन 5 एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग सिविल एविएशन, स्पेस, स्किल डेवलपमेंट एंड डिजिटल एसेट इनोवेशन।
स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, जीएसटी सुधार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती बनाएंगे। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।
एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिव्यूज फ्लड सिचुएशन इन पंजाब।
जम्मू कश्मीर में जम्मू तथा कटरा के बीच रेल शटल सेवाएं तेज बारिश के कारण स्थगित। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा में कमी।
And in US Open tennis, Indo-Kiwi pair of Yuki Bhambri and Michael Venus to take on British pair of Neil Skupski and Joe Salisbury in men's doubles semi-final this evening. And now, Mukesh, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about weather, wars and climate change. The sky darkens, the winds howl, and then the floodgates open. What used to be a rainy day now feels like a disaster movie. But this isn't fiction. This is real. This is now. Yes, Mukesh, we shall talk about the growing fury of weather and what we as citizens can do to calm the storm. Let's begin with what's happening right now. Across states, across mountains, across streets. In Punjab, once golden with crops, floodwaters now sweep through fields and villages. Several people are displaced, schools shut, crops lost, dreams drowned. If we talk about Jammu, terrifying cloudbursts have become the new norm. These are no ordinary rains. Imagine the entire sky unleashing its water in just a few minutes. Enough to trigger landslides, wash away roads and take lives before people can even react. And talking about the national capital, Delhi NCR is choking not on pollution this time, but on water. Streets become rivers, cars float, metro stations flood, offices shut down. And in the hills of Himachal Pradesh, the situation is no better. Tourists are stranded, landslides cutting off roads, families evacuated from what they once called paradise.
जी हाँ, तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या हो रहा है। हम अक्सर कहते हैं ये तो बस तेज वर्षा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ खराब मानसून से कहीं अधिक है। ये जलवायु परिवर्तन है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बढ़ते वैश्विक तापमान का मतलब है कि हमारा वायुमंडल अधिक नमी धारण कर सकता है, जिससे बारिश ज्यादा भारी, तेज और ज्यादा विनाशकारी हो रही है। हिमालय के ग्लेशियर पहले से कहीं अधिक तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियां अपनी सीमा से बाहर निकल रही हैं। आर्द्रभूमियां जो कभी स्पंज की तरह अतिरिक्त पानी सोख लेती थीं, अब कंक्रीट की इमारतों में बदल रही हैं। और ये न भूलें कि हमारे शहर इसके लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। खराब जल निकासी, अवैध निर्माण, वनों की कटाई, ये सब मिलकर इसे और बदतर बना रहे हैं। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य में ध्रुवीय भालुओं और बढ़ते समुद्रों तक सीमित नहीं है, ये आ गया है, अब ये है, और कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसका प्रकोप महसूस कर रहे हैं।
But yes, what's really happening with our climate and why should we care? Since the 1800s, we have been burning fossil fuels, coal, oil, gas to power our lives. This releases carbon dioxide, a greenhouse gas that traps heat in our atmosphere. Deforestation adds to the problem, stripping the earth of natural carbon absorbers, trees. As carbon dioxide levels rise, so do global temperatures. That means glaciers are melting, sea levels creeping higher, and extreme weather becoming not so extreme anymore, just more common.
बिल्कुल, ये केवल प्रकृति ही खतरे में नहीं है, हम भी खतरे में हैं। हमारा स्वास्थ्य, हमारा भोजन, हमारे घर, सभी खतरे में हैं। लेकिन बात यह है कि अगर मानवीय गतिविधियों के कारण ये हुआ है, तो मानवीय गतिविधियां इसे बदलने में भी सहायता कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि जिज्ञासु बने रहें, जानकारी रखें और सक्रिय रहें। जलवायु परिवर्तन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, दरअसल ये अभी शुरुआत है और हम सब इस कहानी का हिस्सा हैं।
But yes, there's a hope. Let us talk about the steps that are being taken to minimize disasters. Early warning systems like weather departments now issue alerts hours, sometimes days in advance, and these warnings are saving lives. So we should be alert with the warnings and react to it, of course. Then if we talk about the NDMA and NDRF, all the National Disaster Management Authority and Disaster Response Force have improved their rescue speed and coordination, reaching even to remote villages. Not to forget about the urban planning reforms. Smart cities initiatives include better drainage, green zones, and flood resilient design. We should put more focus on the urban planning these days now. And since the population in every city, every metro city is increasing every day, and so is the load on the urban planning is also increasing. If we talk about the technology in action, drones are used to assess damage, satellites track weather patterns, mobile alerts warn people in real time. So any kind of action beforehand is very much possible now. But institutional action is only one side of the story. The other half is everything depends on us.
बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए आपको वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करनी है। पेड़ लगाएं। जंगल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं होते, ये बाढ़ को भी रोकते हैं, भूस्खलन को कम करते हैं और पर्यावरण को ठंडा रखते हैं। नालियों को बंद ना करें। जी हाँ, सार्वजनिक नालियों या नदियों में कभी भी कचरा ना डालें। प्लास्टिक की बोतल पूरी सड़क को जाम कर सकती है। वर्षा जल का संचयन करें। छत पर लगाए जाने वाले साधारण सिस्टम जल भराव को कम कर सकते हैं और आपको मुफ्त पानी भी दे सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल बने। जी हाँ, साइकिल चलाएं, कारपूल करें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। बचाई गई ईंधन की हर बूंद गर्मी की एक बूंद बचाती है। आवाज उठाएं, जलवायु क्लबों, सफाई अभियानों, स्थानीय अभियानों में शामिल हों, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने स्कूल को शिक्षित करें। हमें एक आंदोलन की आवश्यकता है और इसकी शुरुआत आपसे, हमसे होती है।
Yes, if this year feels worse than the last, it's because it is. And if we don't act now, next year will be worse than this one. Climate change isn't something future generations will deal with. We are the generation that must act. It's not too late, but the window is closing fast. Will we wait for the more floods to come, or will we rise before the waters do? The climate is changing. Let's change too.
और अब समय आ गया है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या खास है। तो इस क्रम में सबसे पहले वस्तु और सेवा कर की बात की जाए।
एब्सोल्युटली मुकेश, इट्स ऑफ कोर्स अ मैटर टू बी चीयर्ड अबाउट। द जीएसटी काउंसिल हैज यूनानिमसली अप्रूव्ड रेट कट्स ऑन स्कोर्स ऑफ आइटम्स ऑफ डेली यूज, मेकिंग मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज चीपर। Briefing media after the 56th GST Council meeting in New Delhi yesterday, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said the new rates will come into effect from the 22nd of this month, the first day of Navratri festival, delivering on Prime Minister Narendra Modi's Independence Day promise of a GST Diwali gift.
These reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions. Health related also will benefit.
Union Minister for Information and Broadcasting Ashwini Vaishnaw has also hailed the government's decision to reduce goods and services tax rates, and we have more from our correspondent.
The biggest tax cuts have come on food, medicines, essential items, farm goods, green energy, small cars and bikes. The GST rate on individual life and health insurance policies have been cut down to nil from 18%. The move will make health insurance policy affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. The GST on 36 life-saving drugs, including cancer and rare diseases treatment, has been reduced to 0%. Besides, the GST rate on medical items of regular use, including thermometer and glucometer, has been reduced from 12% to 5% tax bracket. The GST exemption on health insurance and rate cut on life-saving drugs is a decisive step in making Swasthya Bharat Samruddh Bharat. With Dipendra Kumar, Adarsh for Akashvani News, Delhi.
And marking a milestone in India's journey towards semiconductor self-reliance, Union Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnaw presented three indigenously developed semiconductor chips from Odisha to Prime Minister Narendra Modi on the inaugural day of the Semicon India 2025 conference. Two of the chips were designed and fabricated at the National Institute of Technology Rourkela, while the third was developed by Parala Maharaja Engineering College, Behrampur. We have a report on this.
NIT Rourkela's two integrated circuit designs were featured in a commemorative memento of India's first fully indigenous 32-bit microprocessor, Bikram 32. The achievements come as a part of the institute's active participation in the Chip to Startup C2S program. It was launched by the Ministry of Electronics and IT in 2023. The initiative, led by Principal Investigator Professor Kamalakanta Mahapatra and Co-Investigator Professor Ayas Khan, aims to advance research in VLSI and system-level design. The C2S program not only supports cutting-edge semiconductor research but also aims to build India's semiconductor talent pool. Over the next 5 years, it will generate a trained workforce spanning undergraduate, postgraduate and doctoral levels, directly strengthening the nation's push for Atmanirbhar Bharat in critical technologies. Reflecting on the achievement, Professor S. Kant Swain said,
"Our Honorable Prime Minister was being offered with a memento by Dr. Ashwini Vaishnavji. In that memento, it featured a Bikram IC at the center designed by ISRO. Apart from this, in the peripheral, there are 28 ICs which are being designed by 113 institutions, designed by other few academic institutions all over the NIT and IIT of India. And this all IC is supported by one of our projects funded by Ministry of Information Technology. Under Chip to Startup, we got funding from MIT and we get mentorship from CEDAC Bangalore, and we are being taught about how the IC can be fabricated. Under this, we have provision to generate manpower that will work in semiconductor industry, and at the same time we can produce IC, and from the IC we can create systems and startups."
With institutions like NIT Rourkela and PMEC taking the lead, Odisha is poised to contribute to India's global semiconductor ambition. For Parikrama, this is Itish.
और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। दीपावली पर इस बार रामनगरी अयोध्या को वैक्स म्यूजियम का उपहार मिलने जा रहा है। ये भव्य म्यूजियम श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर लगभग 10,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसमें रामायण के लगभग 50 प्रमुख पात्रों की जीवंत झलक देखने को मिलेगी।
अयोध्या का दीपोत्सव पूरी दुनिया में रामनगरी की पहचान को बढ़ा रहा है। अब अयोध्या दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदेश सरकार की पहल पर दीपावली पर वैक्स म्यूजियम की सौगात मिलने जा रही है। परिक्रमा मार्ग पर बन रहा ये वैक्स म्यूजियम आधुनिक तकनीक और कला का भी अनूठा संगम होगा। म्यूजियम में प्रवेश करते ही पहले श्री राम का मंदिर मिलेगा। अंदर रामायण के 50 प्रमुख पात्रों के मोम के पुतले प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, जटायु जैसे पात्र शामिल होंगे। इन पुतलों को बनाने में महाराष्ट्र की एक संस्था केरल के विशेषज्ञों की सेवाएं ले रही है, ताकि पात्रों के हाव भाव, वेशभूषा और ऐतिहासिक संदर्भों को पूरी तरह से जीवंत किया जा सके। म्यूजियम में रामायण के प्रमुख प्रसंगों को भी दृश्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। नगर निगम के आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि म्यूजियम में आधुनिक तकनीकों जैसे ऑडियो विजुअल प्रभाव और इंटरैक्टिव डिस्प्ले का भी उपयोग किया जाएगा, जो बच्चों और युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित करेगा। इस परियोजना पर अब तक करीब 7.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।
अयोध्या नगर निगम के द्वारा काशीराम कॉलोनी के सामने वैक्स म्यूजियम का निर्माण कराया जा रहा है, जो ट्रिपल पी मॉडल के तहत पूरा बिल्डिंग बनाने का और लैंड डेवलपमेंट का जो काम है वो संबंधित संस्था द्वारा किया जा रहा है। जमीन नगर निगम ने दी है और जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है कि जो भी उसमें रेवेन्यू क्रिएट होगा उसका कुछ परसेंटेज नगर निगम को देना होगा। इस मॉडल पर म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है।
अयोध्या में वैक्स म्यूजियम के निर्माण से न केवल धार्मिक पर्यटन को बल मिलेगा, बल्कि रामायण के मूल्यों और भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेगा। ये म्यूजियम अयोध्या के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परिक्रमा के लिए शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
एंड नाउ टेकिंग यू ऑल टू डाउन साउथ स्ट्रेट टू तिरुवनंतपुरम, where Kerala is in festive spirit as it awaits the arrival of Thiru Onam tomorrow. And today on the Uttaradam, the second most important day of the celebrations, homes are decorated with floral carpets, markets bustle with last-minute shoppers, and the aroma of traditional feasts fills the air. Beyond all boundaries of caste and religion, people join hands to welcome the noble king Mahabali, whose legendary return is said to bring back the golden days of peace, equality, and prosperity. More from our Thiruvananthapuram correspondent, Sri Smithy M. Paluruthi.
The highlight of Uttradam is the last-minute shopping rush known as Uttradapachil. This 11th hour frenzy sees households across Kerala making final preparations for tomorrow's Thiruvonam. Thousands of cultural and shopping festivals being held throughout the state also reach their peak today. Uttradam, often called First Onam, is believed to mark the beginning of King Mahabali's four-day annual visit to his kingdom. To welcome the legendary ruler, families adorn their homes with Onapookalam, beautiful floral carpets laid down in courtyards. Preparations are also in full swing for Grand Onasadhya, the traditional feast served on plantain leaves with rice, an array of curries, and the seed delicacy payasam. True to custom, most of the Keralites take part in this feast either by preparing it at home or by joining one elsewhere. Adding to the festive spirit, expectations about pleasant weather on Friday further enhances the charm of Onam celebrations. Smithy M. Paluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
और श्रोताओं, आपको ले चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। अमरीकी ओपन के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज शाम भारत के युकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल विनस का सामना ब्रिटेन के नील स्कुप्सकी और जो सेल्सबरी की जोड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच कल सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज से खेलेंगे।
And in today's business news, benchmark domestic equity indices ended with marginal gains today. The markets had opened on a cheerful note following announcement of the next generation GST reforms. However, both the indices gave up its initial gains later in the session. The Sensex rose 150 points or 0.19% to close at 80,718. Similarly, Nifty was nearly flat, adding 19 points to settle at 24,734.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
आज हम बात करेंगे जाने माने राष्ट्रवादी और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के आलोचक दादा भाई नौरोजी की। भारतीय राजनीति के इस पुरोधा को प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को तत्कालीन बंबई में हुआ था। उनकी लोकप्रियता ही थी कि वे दो बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। दादा भाई ब्रिटिश संसद के पहले एशियाई सदस्य चुने गए थे। उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक दुष्परिणामों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाना जाता है।
अपने कार्यकाल के दौरान दादा भाई ने भारत की हालत सुधारने को लेकर जबरदस्त प्रयास किए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के चलते भारत को हो रहे नुकसान पर उन्होंने गंभीर शोध किया था। इसके बाद वे ब्रिटिश शासन के कटु आलोचक हो गए। दादा भाई नौरोजी ने 1893 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया था। आइए सुनते हैं भारत में कराधान के मुद्दे पर दिए गए इस भाषण के प्रतिपादित अंश।
Never has there been a single farthing spent out of the British exchequer either for the acquirement of India or for the maintenance of it or administration or in any manner connected with India, whilst at the same time hundreds of millions of the wealth of India have been constantly poured into this country. Whether any country in the world could stand such drain as India is subjected to is utterly out of the question. If England itself, with all its wealth, was subjected to such a drain as India is subjected to, it would be reduced to extreme poverty before long.
दादा भाई नौरोजी की हस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 1895 में भारतीय व्यय के लिए गठित शाही आयोग का सदस्य बनाया गया था। उन्होंने 1886, 1893 और 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सालाना अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के शुरुआती दौर के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माना जाता था। दादा भाई की ही प्रेरणा से बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी पर भी उनका असर रहा।
आज महान स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध विद्वान भूपेंद्र नाथ दत्त की भी जयंती है। इनका जन्म 4 सितंबर 1880 को कलकत्ता में हुआ था। भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के भाई थे। वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। युवावस्था में दत्त ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए बंगाल रिवोल्यूशनरी सोसाइटी में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना 1902 में प्रमथ नाथ मित्रा ने की थी। 1906 में वे बांग्ला पत्रिका जुगांतर के संपादक बने, जो बंगाल में रिवोल्यूशनरी पार्टी का मुखपत्र था। 1907 में उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
जुलाई 1908 में जेल से रिहाई के कुछ दिन बाद ही भूपेंद्र नाथ को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया। वहाँ जाकर दत्त भारतीय स्वाधीनता के लिए काम कर रही गदर पार्टी में शामिल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे जर्मनी चले गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। 1916 में वे बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के सचिव बने। 1921 में भूपेंद्र नाथ दत्त मॉस्को चले गए और उसके बाद भारत लौट आए। भूपेंद्र नाथ ने कामकाजी वर्ग को उचित सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। वे लेखक भी थे। भारतीय संस्कृति और समाज पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने अपने बड़े भाई पर स्वामी विवेकानंद पैचर्ड प्रोफेट पुस्तक भी लिखी।
आज हम स्वाधीनता सेनानी और हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को भी याद कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से वे आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। जब लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई तो उन्होंने ब्रिटिश राज समाप्त होने तक चैन से न बैठने की कसम खाई।
1915 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के दौरान गांधी जी से मुलाकात के बाद वे अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में शामिल हुए। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1919 में रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। ऐसे महात्मा हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।
मूविंग ऑन, वी ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू दिस वर्सिटाइल जीनियस धर्मवीर भारती, अ कोलोसस ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, हु पास्ड अवे टुडे इन द ईयर 1997, लीविंग बिहाइंड अ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल लेगेसी।
जी हाँ, धर्मवीर भारती साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी रहे। डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका उपन्यास गुनाहों का देवता हिंदी साहित्य के इतिहास में सदाबहार माना जाता है। और धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अतर सुइया नामक मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम चिरंजी लाल वर्मा और माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था। भारती के पूर्वज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के खुदागंज नामक कस्बे के जमींदार थे। पेड़ पौधों, फूलों और जानवरों तथा पक्षियों से प्रेम बचपन से लेकर उनको जीवन पर्यंत रहा। संस्कार देते हुए बड़े लाड़ प्यार से माता पिता अपने दोनों बच्चों धर्मवीर और उनकी छोटी बहन वीर बाला का पालन करते रहे थे। और उनकी जो पढ़ाई लिखाई रही, उसके बाद स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई ट्यूशनों के सारी चली। उन्हीं दिनों कुछ समय श्री पद्मकांत मालवीय के साथ अभ्युदय के लिए उन्होंने काम किया और इलाचंद्र जोशी के साथ संगम में भी उन्होंने काम किया।
Yes, his works including अंधा योग, सूरज का सातवां घोड़ा एंड गुनाहों का देवता are considered cornerstones of Hindi literature influencing generations. Along with Padmashri, he was also honored with Vyas Samman, Sangeet Natak Academy Award, Maharana Mewar Foundation Award and the Bharat Bharati Samman.
और अब हम याद कर रहे हैं भारतेंदुकालीन हिंदी सेवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले मोहनलाल विष्णु पांड्या का। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने रासो संरक्षा नामक पुस्तक लिखी थी। अपने लेखों के कारण मोहनलाल विष्णु पांड्या नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित होने वाले पृथ्वीराज रासो के प्रधान संपादक मनोनीत हुए थे। मोहनलाल विष्णु पांड्या ने आजीवन हिंदी साहित्य के उन्नयन और तत्संबंधी ऐतिहासिक गवेषणाओं में योगदान दिया। और जब कविराजा श्यामलाल ने अपनी पृथ्वीराज चरित नामक पुस्तक में अनेक प्रमाणों द्वारा पृथ्वीराज रासो को जाली ठहराया, तब उसके खंडन में मोहनलाल विष्णु पांड्या ने रासो संरक्षा नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, न्यायविद तथा लोकसेवक बलदेव प्रसाद मिश्र की आज पुण्यतिथि है। वे भारत के ऐसे प्रथम शोधकर्ता थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी के बदले हिंदी में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर डीलिट की उपाधि अर्जित की थी। बलदेव प्रसाद मिश्र ने तुलसी दर्शन पर विशेष कार्य किया। लगभग 85 प्रकाशित अथवा अप्रकाशित कृतियां उनके साहित्यिक प्रतिभा की परिचायक हैं। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने अपने जीवन काल में लगभग 100 किताबें लिखी। भर्तृहरि के श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक का उनके द्वारा किया गया भावानुवाद इन्हीं शीर्षकों से में वर्ष 1928 में प्रकाशित हुआ। महाकाव्य कौशल किशोर का प्रकाशन वर्ष 1934 में, मुक्तक संग्रह जीवन संगीत 1940 में प्रकाशित हुआ।
Yes, and we also pay tribute to Shiya Ram Sharan Gupta, who was a 20th century Indian poet, novelist and a playwright known for his Gandhian philosophy and patriotism, as well as his famous work Kaki, which is a story about an old woman, which was adapted into a children's film by NCERT. And he was significantly influenced by Gandhism in his writings. His work often focused on themes of compassion, non-violence, village life and Indian mythology, reflecting both his spiritual beliefs and his commitment to the nationalist movement. Despite the shadow of his famous brother, Gupta carved his own distinctive niche in the Hindi literary world. His personal values of simplicity, compassion and integrity were deeply embedded in his writings.
और बंगाली कवि, लेखक और फिल्म निर्देशक प्रेमचंद मित्र की आज जयंती है। उन्होंने बंगाली साहित्य को बहुत सी प्रसिद्ध कृतियां दी। प्रेमेंद्र मित्र के लिखे उपन्यास, कविताएं तथा बाल साहित्य आदि उनकी बंगाली साहित्य को अमूल्य देन है। सन 1957 में प्रेमेंद्र मिश्र को उनकी कविता संग्रह सागर थेके फेरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
एंड टुडे वी आल्सो पे ट्रिब्यूट टू द एक्टर who is one of who became an overnight star with his debut lead role in Bobby in the year 1973 and was known for redefining romance on screen. Bobby was a teen romance that saved his father's RK Studios from financial troubles as well. And regarded as one of the most successful and accomplished actors in Hindi cinema, Kapoor was the recipient of several accolades, including a National Film Award as a child artist for the movie in his father's movie and also 4 Filmfare Awards.
Soch raha tha Manorama, sabhi insaan ek jaise hi to hote hain. Wohi do haath, do paav, aankhein, kaan, chehra, sabke ek jaise hi to hote hain. Phir kyun koi ek सिर्फ एक ऐसा होता है जो इतना प्यारा लगने लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते।
आवर फेवरेट एक्टर ऋषि कपूर, यू विल ऑलवेज बी इन आवर हार्ट्स ऋषि।
बिल्कुल, और अब समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का, तो मुकेश कुमार और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।